स्वपदांतिकम कृष्ण। तो आप सबका यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। आज दूर बेलगाम से जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर का मार्जन इसी समय हो रहा है। वहां प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। बहुत प्राचीन परंपरा है ये, बहुत पुरानी प्रथा है कि जगन्नाथपुरी धाम में वहां के अधिष्ठाता देव श्री जगन्नाथ देव मंदिर छोड़कर सड़क पे बाहर आते हैं, अपने रथ में सवार होकर 2 किलोमीटर सड़क पर चलते हैं और सैकड़ों सैकड़ों लोगों को अपना दर्शन देते हैं। जगन्नाथ जी की बहुत कृपा है कि वो मंदिर के बाहर आते हैं अपना दर्शन सभी को देने के लिए। करोड़ों सालों से ये उत्सव चलते आ रहा है, कोई गणना नहीं कर सकता कि कितनी पुरानी ये बात है। वैसे जगन्नाथ जी तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जगत के नाथ, और उनके साथ में हैं बलदेव, बलभद्र अर्थात बलराम जी उनके भाई, और उनके संग में हैं सुभद्रा देवी उनकी बहन। यहां आप सिंहासन पर देखेंगे आपके दाहिने ओर बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ जी तीनों विराजमान हैं। हमारे मंदिर में ज्यादा जगह न होने के कारण बहुत कृपा से उन्होंने छोटा रूप धारण कर लिया है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कोई जगह की कमी नहीं है, तो वहां बहुत बड़ा रूप है उनका। और वहां पे हजारों लोग उनका दर्शन रोज लेने आते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में इतने सारे सुंदर सुंदर उत्सव होते हैं जिनका इतिहास भी बहुत पुराना है। एक एक उत्सव का वर्णन करने जाएंगे तो एक एक घंटा दो दो घंटे शायद लग जाएं। लेकिन जगन्नाथ जी की भक्ति और सेवा में बहुत रस है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि 500 वर्ष पूर्व प्रकट होकर यहां हमें सिखला रहे थे कि हमें कृष्ण भक्ति कैसे करनी है। संन्यास लेने के बाद में उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम में निवास करना ठीक समझा। इससे हम समझ सकते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम वैष्णवों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रथ यात्रा के 15 दिन पहले एक उत्सव होता है जिसको स्नान यात्रा कहते हैं, जिसमें जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी के अर्चा विग्रह को स्नान की जाती है। वो विग्रह हैं लकड़ी के बने हुए, और बहुत विशेष बात है, हर 12 साल समुद्र में बहकर आती है वो लकड़ी, कोई इधर उधर की लकड़ी नहीं। और फिर ये लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण हो जाता है, और उनके रथ को बनाने के लिए भी विशेष लकड़ी, विशेष पेड़ चाहिए होते हैं। वहां हमारे भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर ने बहुत बड़ी योजना बनाई, क्योंकि इस रथ को बनाने के लिए जो पेड़ थे, लकड़ी थी, वो बहुत कम होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वहां पेड़ ऐसे लगाए उस लकड़ी के, जिसका कि फिर रथ निर्माण हो सके, जिससे कि रथ बन सके। तो सारे जनता और उड़ीसा सरकार भी वहां मंदिर से बहुत प्रसन्न है इस बात के लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी के रथ के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब तैयारी की है। तो खैर, लकड़ी के बने हुए होते हैं और रंग लगा हुआ होता है उनके अर्चा विग्रह के ऊपर, तो जब स्नान किया जाता है बड़े धूमधाम से, उसके बाद में भगवान जगन्नाथ जी को सर्दी हो जाती है, क्योंकि इतना स्नान करते हैं, इतना पानी डालते हैं कि फिर जगन्नाथ जी छींकने लगते हैं, सर्दी हो जाती है, थोड़े बीमार हो जाते हैं, और फिर 15 दिन बाद उनको यात्रा में निकलना होता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी को फिर लक्ष्मी देवी के साथ में रख देते हैं। लक्ष्मी देवी तो उनकी धर्म पत्नी है, तो फिर वो अच्छी तरह से देखभाल कर सकती है जगन्नाथ जी का। तो उस समय जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं जगन्नाथ मंदिर में, वो अंदर चले जाते हैं और वहां पर लक्ष्मी देवी के संग में रहते हैं, और वहां उनका उनको एक नया रंग मिलता है, पेंटिंग होता है, और फिर 12 साल के बाद में वास्तव में मूर्ति भी बदल जाती है। तो इस तरह से ये 15 दिन ये स्नान यात्रा चलती है, इसको अनवसर कहते हैं जगन्नाथपुरी में। और जब जगन्नाथ जी की सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसको 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी तो कोई एलोपैथिक दवा इंजेक्शन वगैरह नहीं लेते हैं ना, तो उनको लक्ष्मी देवी ठीक कर देती है। तो दर्शन कोई नहीं ले सकता उस समय जगन्नाथ जी का, और इसलिए सारे जगन्नाथ जी के भक्त जो हैं बड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि वहां जगन्नाथपुरी में प्रथा है कि वहां के सारे निवासी हर रोज जाके जगन्नाथ जी का दर्शन अवश्य करते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, कि हर रोज जाकर भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अपना काम प्रारंभ करने के पहले भारत में कई धामों में, कई जगह में ऐसे प्रथा आज भी प्रचलित है। जैसे कि जयपुर में, वहां राधा गोविंद जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सुंदर मूर्तियां हैं राधा गोविंद जी की, काले पत्थर से बने हुए हैं गोविंद जी, और वहां सारे गांव के निवासी प्राय हर रोज सुबह मंगल आरती को आते हैं। मंगल आरती बहुत जल्दी सुबह होती है, 4-5 बजे, और वहां के सारे व्यापारी और निवासी जो हैं अवश्य हर रोज सुबह मंगल आरती को आते हैं। हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हमारे मंदिर में मंगल आरती में कितने लोग आते हैं? 20-25 ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि शहर के जीवन में यहाँ लोग आ नहीं पाते। रात को 12 बजे भोजन होता है, फिर 1-2 बजे सो जाते हैं, तो 5 बजे उठेंगे कैसे। लेकिन जयपुर जैसे जगह में आज तक भी लोग जल्दी उठकर हजारों की संख्या में आते हैं। आज भी अगर आप जयपुर जाए मंगल आरती के समय, और जब आप अपने निवास स्थान से या धर्मशाला से या जहां भी आप रह रहे हो वहां से आप मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हो, तो आप देखेंगे सड़क भरे हुए होते हैं, जगह जगह से, गली गली से लोग जल्दी जल्दी से जा रहे हैं। बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे, सब जल्दी जल्दी से भगवान का मंगल आरती का दर्शन करने जा रहे हैं। और जो लोग मंगल आरती का दर्शन नहीं कर सकते, अपने व्यवसाय में जाने के पहले अवश्य एक बार तो गोविंद जी का दर्शन करके ही जाएंगे। इस तरह से जयपुर में खैर धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है, लेकिन फिर भी प्राय अभी देखा जाता है कि अभी भी ये संस्कृति विद्यमान है। और लोगों के लिए जो गोविंद जी ही प्राण धन है, सभी के लिए, सबका जीवन गोविंद जी के इर्द गिर्द ही घूमता फिरता है। उसी तरह से तमिलनाडु में श्रीरंगम धाम है, शहर जहां रंगनाथ जी विराजमान है, भगवान विष्णु या नारायण के स्वरूप हैं, सबसे बड़े विग्रह हैं विश्व में, और एक ऐसे ही विग्रह हैं जो कि लेटे हुए हैं। वैसे ज्यादातर जो भगवान की मूर्तियां होती हैं वो खड़े हुए होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु रंगनाथ जी इस मंदिर में ऐसे सोए हुए हैं और ऐसे अपने सर को आश्रय दिए हुए हैं हाथ से, बहुत लंबे अनंत शेष पर विश्राम कर रहे हैं। तो यहाँ भी सारे श्रीरंगम के निवासी रोज आते हैं, और उनका जीवन भी रंगनाथ जी से मिलता जुलता है, बस उनके लिए ही सब जीते हैं। और घर में बातचीत भी वही होती है, आज रंगनाथ जी को क्या भोग चढ़ाया, और आज रंगनाथ जी के वस्त्र कैसे थे, कैसे श्रृंगार चढ़ाया, कल क्या उत्सव है, आज कौन सा राग बजा, और भगवान की तबीयत आज कैसी है, आज क्या लीला हुई मंदिर में, तो बातचीत यही चलती है। उसी तरह से जगन्नाथपुरी के लोग भी ऐसे ही हैं। उनका जीवन, उनका प्राण धन जगन्नाथ जी हैं। आजकल यहाँ हमारा प्राण धन श्रीमान टेलीविजन ने ले लिया है। सभी लोग यही बातचीत करते हैं, आज कौन सा प्रोग्राम है, हमारा प्रिय कार्यक्रम कितने बजे है, और कल सुबह कौन सा कार्यक्रम होगा, ये चैनल में कौन सा कार्यक्रम है, वो चैनल में कौन सा कार्यक्रम है। और जहां भगवान का मंदिर हुआ करता था हमारे घरों में, आजकल वो जगह टेलीविजन ने ले लिया है। तो टेलीविजन से क्या होता है कि माया हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हम चार दरवाजों के भीतर बैठे हुए हैं, लेकिन सारे दुनिया के गलत चीजें जो हैं, वो इस टीवी के माध्यम से हमारे घर में आते हैं, और घर में आकर हमारे हृदय में जाते हैं, और फिर हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, उसको तोड़ देती है, हमें अश्रद्धालु संशयात्मा बना देती है, और हमें भोगी बनने का प्रोत्साहन देती है। पहले तो टीवी सफेद रंग, काला, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, आजकल तो कलर टीवी आ गया, मतलब रंग बिरंगी माया। पहले माया तो ब्लैक एंड व्हाइट थी कम से कम, लेकिन आजकल और चमक थमक माया का पड़ गया है। तो लोग बहुत आजकल उत्सुक होते हैं कि हमारे घर में कलर टेलीविजन होना चाहिए और बड़ा टेलीविजन होना चाहिए। तो देखिए कहां हमारी संस्कृति थी और कहां हम चले आए, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो इस तरह से जगन्नाथ पुरी के निवासी जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम है भगवान जगन्नाथ जी से। और ऐसे देखा जाता है, और खास करके जो लोग वहां पहली बार जाते हैं तो उन पंडाओं के, पंडितों के आदत देखते हैं, पान चबा रहे होते हैं, इधर उधर थूकते हैं और अपना ताश खेलते हैं, लोगों को पैसे उनसे पैसे छीनने का प्रयास करते हैं, कई तरह के बुरी आदतें हैं उनको, वहां के ब्राह्मणों को। लेकिन फिर भी ये जगन्नाथ जी के सेवक हैं, इसलिए भले वो गलत काम कर रहे हों, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, हमें वो तरह उस तरह के गलत काम नहीं करने चाहिए, लेकिन उनकी निंदा भी हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जगन्नाथ जी के सेवक होते हैं और जगन्नाथ जी उनके दासों के देखभाल कर रहे होते हैं। उसी तरह से वृंदावन में भी ब्रजवासी होते हैं, हम देखते हैं कि कई वृंदावन के निवासी बीड़ी फूंकते हैं, गालियां देते हैं, गंदी बातचीत करते हैं, बुरी आदतें उनकी होती हैं। तो हम शहर से जाते हैं, देखते हैं, अरे वृंदावन में लोग ऐसे करते हैं, ये कैसे ब्रजवासी है, लेकिन हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर ब्रजवासी कोई गलती, धाम के निवासी कोई गलती कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में और वो धाम के आराध्य देव के बीच में आपस में वो निपटा लेंगे, उनका अकाउंट आपस में सेटल हो जाता है। लेकिन हम लोग बाहर से आके अपना नाक अंदर डालेंगे तो फिर हमारा नाक कट जाएगा। पुंडरीक विद्यानिधि करके भगवान के बहुत महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, शुद्ध भक्त थे। तो एक बार वो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी को एक नया कपड़ा अर्पण किया गया। तो इस कपड़े, ये कपड़ा नया था इसलिए उसमें स्टार्च था, स्टार्च को क्या बोलते हैं कपड़े में, गंजी, तो वो गंजी लगा हुआ था उसमें। वैसे अर्चा विग्रह की आराधना में एक नियम होता है कि जब भगवान को, भगवान के विग्रह को कोई नया वस्त्र चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है, तो पहले धोना चाहिए उसको और उसके बाद में अर्पण किया जाता है। लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी के सेवकों ने ऐसे ही धोए बिना गंजी सहित वो वस्त्र को अर्पण कर दिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने इसकी टीका की, ये ठीक नहीं है, और फिर रात को सो गए। और जब सोए तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और उनको लगातार कस के थप्पड़ मारने लगे, फटाफट फटाफट। तो बेचारे पुंडरीक विद्यानिधि जागे, बीच रात में देखा कि लाल लाल सब हो गया, और कहा कि अभी आज से हम कभी जगन्नाथ जी के सेवकों को की निंदा नहीं करेंगे, भले वो गलती करें, कुछ भी करें। और एक भी आचार्य थे, उन्होंने भी जगन्नाथ जी के सेवकों की निंदा की थी, उनको देख कर की कितने गलत आदत है। तो जगन्नाथ जी ने उनको ऐसे लात मार दिया कि वो ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश में पहुंच गए,
और जब वो सो गए जागे तो देखा कि अरे हम तो जगन्नाथपुरी में थे, अभी आंध्र प्रदेश में कैसे आ गए। इसी तरह से जगन्नाथ जी अपने बहुत ही कभी कभी क्रोध भी कर लेते हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन अपने भक्तों के बारे में बड़े वो चौकन्ने रहते हैं। कोई भी कुछ करता है तो फट करके उनको पकड़ लेते हैं। मायापुर जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थल है, वहां पर जो हमारे इस्कॉन का बड़ा मंदिर है, तो उसके पास में ही हमारे मुख्य शाखा के पास में एक सुंदर जगन्नाथ का मंदिर है, केवल 2-4 किलोमीटर की दूरी पर। किसी ने ये मंदिर इस्कॉन संस्था को दान दे दिया, तो वहां इस्कॉन के भक्त रहते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। बड़ा रम्य सुंदर स्थान है, वहां उद्यान अच्छे हैं, फूल बगीचे हैं, बहुत शांत सुंदर वातावरण। जगन्नाथ जी वहां बड़े खुश लगते हैं। आप वहां जगन्नाथ जी की मूर्ति का दर्शन करेंगे तो बिल्कुल हृदय संतुष्ट हो जाएगा। तो वहां मुसलमान लोगों की संख्या भी बहुत है। तो एक बार ऐसे हुआ कि वहां के पुजारी हमारे इस्कॉन भक्त ने वो जब प्रसाद लिया और बाहर गए थे, गेट के बाहर खड़े थे कि वहां एक आदमी ये मुसलमान जा रहे थे, तो उनके हाथ में उन्होंने प्रसाद देखी, जगन्नाथ जी का प्रसाद है ले लो। तो मुसलमान ने कहा नहीं मैं प्रसाद वसाद नहीं लेता, मेरे को नहीं चाहिए। तो मुसलमान थे तो श्रद्धा नहीं थी उनको, चले गए। तो अगले दिन यही व्यक्ति दौड़कर वो पुजारी के पास आए, पैर पड़े, मुझे प्रसाद खिलाओ प्रसाद खिलाओ। और वो जगन्नाथ जी के सामने दंडवत करने लगे। बोला अरे भाई क्या हुआ, कल तो प्रसाद इनकार किया पर हमको ठुकरा दिया। कहा अरे नहीं क्या बात है कि कल रात को जब हम सोए तो हमारे सपने में जगन्नाथ जी आए और आकर हमारी छाती पर बैठे और छाती फाड़ने लगे और थप्पड़ मारने लगे हमको, तुमने हमारे प्रसाद को ठुकरा दिया, खबरदार ऐसे कभी किया तुमने। और मारने लगे, बार बार मारने लगे और मेरे छाती फाड़ने लगे। तो मैं तो प्राय वहां मर गया और मैंने वचन लिया उनके सामने कि आज से मैं उनके प्रसाद का निरादर कभी नहीं करूंगा। तो इस तरह से वो आए और उनका प्रसाद ग्रहण किया। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की सेवा वहां जगन्नाथ धाम के लोग करते हैं बहुत सुंदर ढंग से, भले उनके अंदर जो आदतें हो ना हो, लेकिन जगन्नाथ जी उनके लिए सब कुछ है। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की सेवा वो करते हैं। 15 दिन जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उनका देखभाल होता है। और वहां के लोग जगन्नाथपुरी के लोग बड़े उदास रहते हैं क्योंकि हर रोज दर्शन करने के आदि होते हैं और अचानक 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता, तो बड़े उदास होते, अपेक्षा करते रहते हैं आतुरता से कि कब 15 दिन समाप्त होंगे और जगन्नाथ जी कब रथ में सवार होकर बाहर आएंगे। तो इस तरह से 15 दिन किसी न किसी तरह से बीत जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी वहां 18 साल, अपने प्रकट लीला के 18 साल वहां पर रहे जगन्नाथपुरी में, और हर साल वही कार्यक्रम रहता था उनका। तो स्नान यात्रा या अनवसर उत्सव के समय उनको ये दर्शन न प्राप्त करना सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ जगन्नाथपुरी में रहकर अगर भगवान का दर्शन नहीं मुझे प्राप्त हो तो मैं सहन नहीं कर सकता। तो पास में ही जगन्नाथ जी का और एक तीर्थ स्थान है जिसको आलालनाथ कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए, लेकिन सब भक्त लोग आ रहे थे बंगाल से, जो वैष्णव थे मायापुर नवद्वीप इत्यादि से। हर साल चातुर्मास के समय जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले वहां आया करते थे। तो जब यहाँ जगन्नाथपुरी के भक्तों को पता चला कि सारे भक्त आ रहे हैं, तो उन्होंने जाकर चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि आपके भक्त आ रहे हैं और आप कहीं दूर चले जाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा, भक्त लोग बड़े निराश हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए जगन्नाथपुरी में। तो उधर जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। अभी रथ यात्रा में क्या होता है कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी बाहर निकलते हैं। उनके जो सेवक, खास सेवक होते हैं, जो उनको उठाकर ले आते हैं रथ के लिए। जगन्नाथ जी की सेवा के लिए अलग अलग तरह के सेवक होते हैं, अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग तरह के व्यक्ति। और जगन्नाथ जी को उठाकर रथ में लाने के लिए बड़े हट्टे खट्टे उनके सेवक होते हैं। ये भी वंश चलता है उनका, ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति आकर, हट्टा खट्टा व्यक्ति आकर जगन्नाथ जी को उठाए, नहीं, कोई भी पहलवान आकर करे वो नहीं कर पाएगा। केवल वही वंश में जो चलते आ रहे हैं उन पहलवानों के जो जाके जगन्नाथ जी को उठाते हैं, केवल वही मात्र उठाकर ले जाते हैं भगवान को, और भगवान को झुलाते झुलाते ले जाते हैं। बड़ा सुंदर है दृश्य, और ये कल सुबह को होगा। झूमते झूमते आते हैं जगन्नाथ जी, और फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वहां उनको झुलाते हैं, फिर से और थोड़ा कदम चलते हैं, फिर उनको झुलाते हैं। इस तरह से चलते चलते हजारों लाखों लोग देख रहे होते, और सभी लोग जय जगन्नाथ कर रहे होते। जगन्नाथ जी के लिए एक रथ, बलदेव जी के लिए एक रथ, सुभद्रा देवी के लिए एक रथ, इस तरह से रथ में सवार हो जाते हैं, और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो जाती है, और धुआंधार कीर्तन चलता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कितने सारे लोग, आजकल भी करोड़ों की लोग संख्या में लोग आते हैं, सब वैष्णव। हाँ, उनमें से आजकल हजारों की संख्या में पॉकेटमार भी आते हैं। हमारे भक्तों का अनुभव है कि जो भी हमारे भक्त मुंबई से गए थे, सबके जेब कट गए, एक भी बेचारे रह नहीं गए। एक ने तो अपने जेब में हाथ डालकर पॉकेट मार के हाथ से जेब हाथ मिलाया। तो खैर, ऐसे आजकल इसका फायदा उठाकर, उत्सवों का फायदा उठाकर चोरों की संख्या भी बढ़ गई। आखिर कलयुग है, क्या किया जाए। तो खैर, ये उत्सव बहुत प्राचीन है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय भी हजारों की संख्या में बंगाल से इधर उधर से भक्त आते थे, और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में वहां कीर्तन किया करते थे। तो अलग अलग भक्तों को उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई, लेकिन रथयात्रा शुरू होने के पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को लिया और गुंडीचा मंदिर में गए। अब ये गुंडीचा मंदिर 2 किलोमीटर के दूरी पर है जगन्नाथ मंदिर से। जगन्नाथ मंदिर को नीलाचल कहते हैं और गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल कहते हैं, और ये 2 किलोमीटर की दूरी पर ये रथ चलता है। और हर साल रथ यात्रा के बाद जब भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं, तो 1 हफ्ते या 9 दिन के लिए वहां पर विश्राम करते हैं, और फिर वहां और एक सुंदर उत्सव होता है हेरा पंचमी, क्योंकि लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हो जाती है कि ये कहां चले गए हमको छोड़कर। उस उत्सव का वर्णन कभी और करेंगे। तो उसके बाद में गुंडीचा मंदिर छोड़कर फिर से एक रथ यात्रा होती है, उसको उल्टा रथ कहते हैं। उल्टा रथ क्योंकि इस बार जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर से होकर जगन्नाथ मंदिर की ओर आते हैं, उल्टा रथ। वास्तव में उड़ीसा के लोग इस जगन्नाथ रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा कहते हैं, उड़ीसा के बाहर के लोग जो है हम लोग उसको जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं। तो ये प्रथा है कि रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है, खास करके एक दिन पहले पूरा अच्छी तरह से साफ किया जाता है मंदिर को, और उसके बाद में जगन्नाथ जी आते हैं और वहां पर विराजमान होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हर साल अपने भक्तों को ले जाकर वहां मंदिर का मार्जन कराया करते थे, और प्रताप रुद्र राजा उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया था कि चैतन्य महाप्रभु को जो भी चाहिए उनको दे देना। तो उन्होंने 100 झाड़ू मंगाए अच्छे से, और 100 मटके मंगाए, और वहां गोविंद कुंड वहां से, और इंद्रदुम्न सरोवर इत्यादि जो भी निकट के सरोवर थे वहां से सब उनके भक्तों ने भर भर के मटकों में पानी लाए। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को आदेश दिया, अभी हम सब गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे, और सभी लोग मंदिर को झाड़ू लगाने लगे। देखिए, ये मंदिर का मार्जन करना कोई साधारण बात नहीं है। मंदिर का मार्जन करना मतलब हमारे हृदय का मार्जन करना। चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई छोटा व्यक्ति हो, भगवान के सामने सभी छोटे हैं। केवल संसार में हम आकर हम स्वप्न बनाते हैं, अपने आप हवा महल बनाते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं इत्ये हूँ, फलाना हूँ, फलाना हूँ, लेकिन भगवान के सामने तो हम सब तुच्छ हैं, हम सब छोटे हैं। इसलिए भगवान के मंदिर में आकर सभी को बहुत ही नम्र बनना चाहिए, छोटी सी छोटी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी संस्था में भी ये सेवाएं होती हैं, जैसे चप्पल की सेवा करना, जूते की सेवा करना, झाड़ू मारना, पोता मारना, मंदिर ये बर्तन धोना,
छोटी सी छोटी सेवा, बड़ी सी बड़ी सेवा, भगवान की दृष्टि में सारी सेवाएं एक होती हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा का पहले जब रथ यात्रा प्रारंभ होने ही जाती है, उस समय वहां नीलाचल के राजा जो होते हैं गजपति, वो आकर वहां रास्ते को झाड़ू लगाते हैं ताकि जब रथ चले तो स्वच्छ रास्ता मिले। तो वहां के राजा उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय में थे, राजा प्रताप रुद्र, तो वो भी आकर झाड़ू लगा रहे थे रास्ते के ऊपर। लेकिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया, और आज के दिन भी वहां वैष्णव भक्त सारे गुंडीचा मंदिर में इसी वक्त कर रहे होंगे। सभी लोग जगह जगह से, प्रांत प्रांत से लोग आकर वहां झाड़ू मार रहे होंगे, कोई पानी फेंक रहा होगा, स्वच्छ कर रहे होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने बहुत अच्छी तरह से झाड़ू लगाया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो भी कचरा निकला खुद अपने वस्त्र में उसको डालकर वो बाहर उसका एक गड्ढा, उसका एक पहाड़ बना दिया। और जब दूसरे भक्तों ने देखा तो उन्होंने भी अपने अपने वस्त्र लिए, जो भी कचरा उन्होंने एकत्र किया था वो भी अपने वस्त्र में डालकर उन्होंने एक उसका पहाड़ बना दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने अच्छी तरह से सफाई कर रहे थे, जोर से सफाई कर रहे थे, कि चैतन्य महाप्रभु ने जो कचरे का पहाड़ बनाया बाहर वो सबसे बड़ा था, और सारे भक्तों ने एकत्र होकर जो पहाड़ बनाया कचरे का वो महाप्रभु के पहाड़ से छोटा था। और महाप्रभु जब भी देखते थे कि कोई भक्त थोड़ा आलसी हो रहा है तो उसको थोड़ा टोकते थे, और अगर कोई भक्त अच्छी तरह से सफाई कर रहा था उसकी प्रशंसा करते थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस तरह से पूरी तरह से मंदिर का मार्जन हो गया। जगमोहन करके एक जगह होता है जो मंदिर के दर्शन जो गर्भगृह के थोड़े बाहर होता है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, तो गर्भगृह को साफ किया, फिर भगवान के आसन को साफ किया, फिर जगमोहन को साफ किया, फिर पास के जो कमरे हैं उनको साफ किया गया, उसके बाद में आंगन को भी साफ किया गया और दीवारों को भी झाड़ू मारा गया। और इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी दोबारा साफ करना है, तो दोबारा झाड़ू लेकर सभी लोग तैयार हुए। जैसे कल्पना कीजिए अपने मन में 100 भक्त झाड़ू लगा रहे हैं जोर से, और सभी लोग जब झाड़ू मार रहे थे तो कृष्ण 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 हरि हरि ऐसे उच्चारण करके कर रहे थे, कोई बीच में ऐसे बातचीत नहीं कर रहा था, इधर उधर की बातें कोई नहीं कर रहा था, सभी के नाम में कृष्ण, सभी के होठों में कृष्ण का नाम गूंज रहा था। तो देखिए कितना पावन वातावरण हुआ होगा वहां पर, सभी आनंद से आनंद भाव विभोर हो रहे थे। और जब दूसरी बार ऐसे सफाई हो गया तो वो कचरा लेकर फिर वो बाहर रखा गया और सारा आंगन बिल्कुल चमक रहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि अभी पानी से अच्छी तरह से धो डालना चाहिए। तो फिर 100 मटकों में जो पानी थे, पानी लेकर 100 आदमी वहां खड़े थे महाप्रभु के आदेश के लिए। महाप्रभु ने कहा चलो अभी पानी डालो, तो सभी लोगों ने पानी डालना आरंभ किया और फिर से और साफ करने लगे झाड़ू से और हाथों से। और केवल जमीन पे नहीं, दीवारों पे, ऊपर छत पे, और इतना पानी हो रहा था कि बस ऐसे लग रहा था कि सब जगह नदी बह रही है, मंदिर में, कमरों में, आंगन में, वहां वहां से उधर पानी बहते हुए बाहर जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि नदियां बह रही हैं वहां पर, इतना पानी वहां जा रहा था। और फिर साफ करते करते और भी चमक आने लगी, और हजारों की संख्या में और आ रहे थे। इतने भक्त इकट्ठे हुए थे उस कुंड के तट पर कि एक दूसरे से टक्कर करते थे और जो है मटका था, मटके से मटका लगकर मटका टूट जाता था और फिर नए मटके लाए जाते थे। ऐसे हजारों के संख्या में मटके लाए गए। और फिर जब कुंड के तट पर कोई स्थान नहीं था सरोवर में और पानी भरने के लिए कोई जगह नहीं था, तो बाकी भक्त जो है इधर उधर कुएं में जाकर वहां से पानी निकालने लगे, मटके भरने लगे और फिर साफ करने लगे। और उस समय भी अगर किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ मटका चाहिए था, किसी को एक मटका दूसरे को देना था, तो करके नहीं बुलाते थे, क्या कहते थे, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो दूसरे लोग समझ जाते थे कि हाँ ये हमें बुला रहे हैं। तो कृष्ण और हरि ये दो शब्दों के अलावा कोई भी शब्द बोला नहीं जाता था उस समय। दिन भर अगर
कोई कृष्ण नाम सुनता था तो जानता था कि ये मुझे बुला रहा है, उसको कुछ चाहिए, मटका चाहिए, क्या चाहिए, तो देखते थे, तो मटका दे देते थे, ले लेते थे। तो कल्पना कीजिए कितना सुंदर वातावरण हुआ होगा उस समय। तो दिन भर ऐसे साफ करते करते समय बीते जा रहा था और भक्त लोग आनंद से कीर्तन करते जा रहे थे साफ करते करते। उधर बंगाल से एक वैष्णव आए थे, उन्होंने क्या किया, चुपके से एक मटका लिया, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर पानी फेंका, मटका साइड में रख दिया और जो पानी उनके चरण कमलों से आया उस चरणामृत को लेकर उसका पान किया, चरणामृत। तो चैतन्य महाप्रभु ने बाहर से बड़ा रोष या क्रोध प्रकट किया और उनके पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहने लगे, यारो देखो तुम्हारे बंगाल का वैष्णव आता है और ऐसे उसने मेरे पैरों में पानी डाल दिया और इस पानी का पान कर दिया, अभी इसका फल, इसका पाप मेरे सर पे आएगा। अंदर ही अंदर चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता व्यक्त की अंदर से, लेकिन बाहर से वो एक उदाहरण दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने क्रोध प्रकट किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्वरूप दामोदर और गोस्वामी ने उस भक्त को गले से पकड़ा पीछे से और बाहर लगा दिया। तो इस तरह से और एक थोड़े भक्तों ने भी छुप छुप के उस पानी का पान कर दिया। तो इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों का जल जो है, चरणामृत का पान करके कई भक्त लोग बड़े संतुष्ट हुए और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने सारे गुंडीचा मंदिर को फर्स्ट क्लास बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर दिया, फिर उसको सुखा दिया और जगन्नाथ जी के लिए स्थान को बिल्कुल तैयार कर दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बताते हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान को अगर कहीं निमंत्रण देना है, भगवान को कहीं विराजमान कराना है, तो उस स्थान को पवित्र करना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। अगर हमारे हृदय में हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, विराजमान कराना चाहते हैं, तो हमें हृदय को भी शुद्ध करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो इस तरह से ये चित्त का मार्जन कैसे होता है, हरि नाम के संकीर्तन से। तो जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है वो धीरे धीरे से धुल जाते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, श्रृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम ये अपने आप में बहुत पुण्यवान है, लेकिन जब हम इसको बहुत भक्ति भाव से स्वीकार करते हैं तो हमारे हृदय में जो भी अभद्र चीजें हैं, जो भी गंदी चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, ये सब धुल जाती हैं और हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है और इस समय फिर भगवान वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। हम भी देखते हैं, हम किसी अच्छी गंदे जगह में जाकर बैठना नहीं चाहते, हमको भी अच्छा नहीं लगता। हमारा घर हम कितना अच्छी तरह से साफ रखते हैं। हाँ, हमारे देश में ये बुरी आदत है कि अपने घर को साफ रखते हैं, कचरा सार घर के बाहर है ना। घर के बाहर जितना भी गंदा हो कोई बात नहीं, लेकिन घर साफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ये स्वच्छता हमें सब जगह रखनी चाहिए, सड़कों को, घर को, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने हृदय को साफ रखना चाहिए, कृष्ण कथा सुनकर, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करके। तो इस तरह से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ जी के लिए गुंडीचा मंदिर तैयार की गई और फिर रथ यात्रा के समय सारे जगन्नाथ जी के सेवकों ने जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया को रथ पे लाए और वहां चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के कीर्तन पार्टी बनाए। अलग अलग प्रांतों से भक्त आए थे तो महाप्रभु ने 7 पार्टी बनाए, 7 दल। हर एक दल में 2 भक्त थे जो कीर्तन करते और 5 लोग उनके पीछे पीछे बोलते और साथ साथ में 2 मृदंग बजाने वाले। तो 14 मृदंग बज रहे थे और 7 दल थे, 4 रथ के सामने, 1 बाईं ओर, 1 दाहिने ओर, 1 पीछे। इस तरह से सात दल धुआंधार कीर्तन बजा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे, नृत्य करते रहते थे, कभी इस दल में तो कभी उस दल में, और किसी को पता नहीं चलता था कि चैतन्य महाप्रभु कहां पर हैं, और हर एक दल को लगता था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे दल में हैं, हमारे ग्रुप में हैं। जिस तरह से जब कृष्ण भगवान वृंदावन की लीला करते थे तो ग्वाल बालों के संग में वो वन में जाया करते थे अपने गाय बछड़ों को लेकर, और जब गाय के बछड़े चर रहे होते थे तो अपने मित्रों के साथ में बैठकर वो प्रसाद का सेवन करते थे। वो बीच में बैठ जाते और सारे ग्वाल बाल बिल्कुल उनका गोलाकार बनाकर उनके इर्द गिर्द बैठ जाते, और सभी को लगता, सारे ग्वाल बालों को लगता कि कृष्ण मेरे ही ओर देख रहा है। उसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे, बहुत सारे गोपियां थी वृंदावन की, हर एक गोपी सोच रही थी कि कृष्ण मेरे ही साथ है और दूसरे के साथ नहीं है, हालांकि कृष्ण सभी के साथ में थे। उसी तरह से सारे भक्तों, हर एक भक्त को लगा कि चैतन्य महाप्रभु केवल मेरे साथ में है, अपने दल में है। लेकिन जो ऊपर से देख रहे थे, उस देख रहे महाप्रभु कहां से कहां नृत्य कर रहे हैं, और कभी कभी ऊपर कूदते, हरी हरी कृष्ण कृष्ण करके ऊपर कूदते, तो कभी नीचे गिर जाते, और कभी अग्नि के चक्र की तरह घूमते, कभी इस तरह घूमते, कभी उल्टे ऐसे घूमते, और कोई समझ नहीं पा रहा था। सभी आश्चर्यचकित रह गए महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखकर, और जगन्नाथ जी भी कभी कभी इसको देखकर बिल्कुल विस्मित रह जाते और रुक जाते अपने रास्ते पर, तो सारे रथ रुक जाता। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में खूबी ये है कि रथ केवल जगन्नाथ जी की इच्छा के अनुसार चलता है। जगन्नाथ जी जब चाहते हैं रथ चलता है, जगन्नाथ जी जब नहीं चाहते हैं तो रथ रुक जाती है। भले कितने ही लोग रथ को खींच रहे हों, अगर जगन्नाथ जी सोचते हैं कि मुझे रुकना है तो हाथी घोड़े भी आए खींचने के लिए, रथ वहीं का वहीं रह जाएगा। और ऐसे हुआ था भी, जगन्नाथ जी बीच बीच में रुक जाते थे और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते कभी रथ के पीछे चले जाते और जगन्नाथ जी इधर उधर देखते कि वहां कहां गए महाप्रभु, दिखाई नहीं पड़ते। तो जब तक महाप्रभु फिर से सामने नहीं आते कीर्तन करने के लिए, जगन्नाथ जी खड़े होते कि आगे आगे नहीं जाएंगे, और जब महाप्रभु चले आते आगे तो फिर से रथ आगे चल जाता। तो इस तरह से ऐसे चमत्कार होते रहते थे। तो ऐसे कीर्तन करते करते आगे बढ़ते जा रही थी रथ यात्रा, और चैतन्य महाप्रभु कभी कभी बीच में जगन्नाथ जी के सामने सुंदर स्तुतियां अर्पण करते थे। इससे हम सीख सकते हैं कि जब हम भगवान के अर्चा विग्रह के सामने आते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, तो हमें प्रार्थना वंदना करनी चाहिए। लेकिन कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? ऐसे नहीं कि मेरा व्यवसाय बढ़ाओ, मेरे पड़ोसी को सबक सिखाओ, ऐसा सब नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कैसे प्रार्थना की? जयते जयते देवकी नंदन सौ, जयते जयते कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप, जयते जयते मेघ श्यामल कोमलांगो, जयते जयते पृथ्वी भारनाशो मुकुंभ, जयते जयते देवकी नंदन सौ। जय जयकार हो किनका? देवकी नंदन श्री कृष्ण का। जयति जयति कृष्णो, जय जय का जय जयकार हो उस कृष्ण का जो कि वृष्णि वंश के प्रदीप हैं। जय जयकार हो उस कृष्ण का जिनका रंग शरीर की कांति कैसा है? मेघ श्यामल। जैसे बरसात के मौसम के बादल का रंग जो होता है, उनके शरीर की कांति भी वैसे होती है और उनका शरीर बड़ा कोमल होता है, ऐसे श्री कृष्ण का जय जयकार हो। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद, जय जयकार हो उस कृष्ण का जिनका नाम मुकुंद है और जो कि पृथ्वी के भार का नाश, पृथ्वी के भार को नाश करते हैं, जो पापी लोग हैं उनका संहार करते हैं, असुरों को नाश करते हैं, जय जयकार हो ऐसे कृष्ण का। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने आके ऐसे प्रार्थना करते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि हे कृष्ण, हे ब्राह्मणों के देव, हे गाय और ब्राह्मणों के शुभचिंतक, हे सारे जगत के हितैषी गोविंद, मैं आपको नम्र प्रणाम करता हूँ। इस तरह से सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, कितने सारे सुंदर श्लोक बोले जाते थे और फिर बीच में फिर से कीर्तन शुरू करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखलाया है कि हमें कैसे भगवान की प्रार्थना, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किस तरह से हृदय की बातें, जो शास्त्रों में सुंदर प्रार्थनाएं हैं, उन्हें भी हमें सीखने चाहिए, हमें पढ़ने चाहिए रोज, बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इस तरह से महाप्रभु सुंदर प्रार्थना करते, कई बार इन प्रार्थनाओं को दूसरे भक्त समझ लेते, कभी कभी महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, इन प्रार्थनाओं का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, दूसरा कोई नहीं समझता था। केवल उनके जो नित्य पार्षद हैं, उनके साथी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, केवल वही समझते थे कि महाप्रभु क्या बोल रहे हैं और इसका अंदरूनी मतलब क्या है। इस तरह से कीर्तन करते करते वहाँ बलगंडी नाम के जगह तक रथ पहुंच गए। कभी कभी बीच में रथ रुक जाता था और भक्त लोग आकर कुछ न कुछ अर्पण करते थे, कोई फूल, कोई भोग इत्यादि। तो बलगंडी नाम की जगह, जो कि गुंडीचा मंदिर के बहुत पास है, वहाँ जगन्नाथ जी को थोड़ा विश्राम करना था, तो उन्होंने रथ को रोक दिया। और रथ को रोक दिया तो उस समय अनेक भक्त आकर नाना प्रकार के व्यंजन इत्यादि, फूल, चंदन इत्यादि अर्पण करने लगे भगवान को। उस समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ गुंडीचा मंदिर के पास में जो बगीचे थे उसमें थोड़ा बहुत विश्राम करने गए, और वहाँ भक्तों ने बहुत प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह से फिर से कीर्तन आरंभ हो गया। और जब जगन्नाथ जी देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, तो उन्होंने सोचा कि मुझे आगे नहीं जाना है। तो महाराज प्रताप रुद्र जो वहाँ के राजा थे, वो सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी आगे बढ़ नहीं रहे हैं, रथ आगे बढ़ नहीं रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने अपने पहलवानों को बुलाया, पहलवान भी खींचने लगा रथ को, लेकिन रथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। और फिर उन्होंने हाथियों को बुलाया, कई हाथियों को फिर बांध कर हाथी भी खींचने लगे रथ को, लेकिन जगन्नाथ जी ने जब निर्णय किया कि उनको बैठे रहना है, तो हाथी भला क्या कर सकता है। तो हाथी भी थक गए, हाथी के जो देखभाल करने वाले थे माहूत, वो अंकुश से मार मार रहे थे बेचारे उन हाथियों को, लेकिन हाथी जोर लगाए जा रहे थे, लेकिन रथ नहीं आगे बढ़ रही थी। अचानक वहां चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने हाथियों को छुड़वा दिया, घोड़ों को छुड़वा दिया, सब पहलवानों को इधर उधर कर दिया, और अपने भक्तों से कहा कि तुम लोग अभी रथ खींचो। तो वहां भक्त लोग आकर वहां रस्सी पकड़ने लगे, और उधर चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे गए और पीछे जाके अपना कपाल जो है रथ से स्पर्श किया। और जैसे ही महाप्रभु ने रथ से अपना कपाल स्पर्श किया, वैसे ही तुरंत रथ आगे बढ़ने लगा। और आगे जो भक्त लोग रस्सी खींच रहे थे, उनको खींचने की भी आवश्यकता नहीं हुई, उनको लग रहा था कि केवल हम रस्सी पकड़ रहे हैं हाथ में, रथ खुद ब खुद चल रही है। तो सारे लोग ये चमत्कार देखकर विस्मित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, और महाराज प्रताप रुद्र इत्यादि भी वहां बड़े प्रशंसा करने लगे महाप्रभु जी की, गुणगान करने लगे। और फिर से धुआंधार कीर्तन चालू हुआ, और उधर महाराज प्रताप रुद्र भी कीर्तन को देखने के लिए आए। सभी लोग भाव विभोर थे, किसी को पता नहीं चल रहा था दिन है रात है, क्या हो रहा है, थकावट किसी को नहीं हो रही थी, सभी लोगों को कीर्तन करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति मिल रही थी, सभी लोग बिल्कुल कीर्तन में मग्न थे, हजारों हजारों की संख्या में लोग बिल्कुल भावोन्माद हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु को देखकर ही सभी के आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। उधर चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद श्रीवास ठाकुर, वो चैतन्य महाप्रभु को नृत्य को देख रहे थे, और इतने मग्न थे महाप्रभु के नृत्य को देखते हुए कि उनको भी पता नहीं चला कि मेरे आगे कौन है, पीछे कौन है, बाएं दाएं कौन है। उधर महाराज प्रताप रुद्र भी उनके पीछे ही खड़े थे, और अपने सेवक हरिचंदन के हाथ पर
कंधे पर हाथ रखकर वो महाप्रभु को देख रहे थे। श्रीवास ठाकुर अचानक उनके आंखों के सामने आए। श्रीवास ठाकुर को पता नहीं चला कि मैं कहां हूं, केवल महाप्रभु को देख रहे थे। तो जब हरिचंदन ने देखा कि श्रीवास ठाकुर महाराज प्रताप रुद्र के सामने आए हैं, तो उन्होंने कंधे पे ऐसे यूं हाथ रख के श्रीवास ठाकुर को बताना चाहा कि आप थोड़ा साइड हो जाइए, इस तरफ हो जाइए। तो श्रीवास ठाकुर भाव विभोर थे, उनको पता नहीं चला कौन क्या ऐसे टक 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 कर रहा है अपने कंधे पर। ऐसे जब चार पांच बार ऐसे हुआ तो श्रीवास ठाकुर को गुस्सा आया कि कौन है बार बार मैं ऐसे धक्का दे रहा है पीछे से। तो पीछे घूमकर कस के हरिचंदन को थप्पड़ मार दिया, ये क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं इतना हरि कीर्तन में इतना मग्न हूं, महाप्रभु को देख रहा हूं। तो हरिचंदन को आया गुस्सा, अरे मेरे को थप्पड़ मार दिया। तो वो तर्क करने ही वाले थे लेकिन महाराज प्रताप रुद्र ने रोक लिया, अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, श्रीवास ठाकुर जैसे वैष्णव के हाथों से थप्पड़ खाया कोई साधारण बात नहीं है, तुम्हें खुशी से नाचना चाहिए, क्रोधित मत हो जाओ। अब श्रीवास ठाकुर को डिस्टर्ब मत करना, विचलित मत करना, तुम दूर रहो। तो इस तरह से वैष्णवों की कार्य को कौन समझ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कीर्तन में अभी जब हम करेंगे कोई हमें धक्का दे तो हम भी वैसे ही करें, हमें महान भक्तों का नकल नहीं करना चाहिए। केवल ये हम सुनकर इन लीलाओं को हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है, लेकिन हम जब नृत्य करते हैं कीर्तन करते हैं तो हमेशा देखना चाहिए। ये तो अनुभव है कि कीर्तन करते समय कितने लोगों के बेचारों के दांत टूट जाते हैं, यहाँ पर किसी के चश्मे टूट जाते हैं, यहाँ पर किसी के चश्मे टूट जाते हैं, किसी के क्या क्या पेट में कुछ लग जाता है। हाँ, कभी भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं तो देखते नहीं है कि हाथ पैर कहाँ पे घुमा रहे हैं, तो दूसरे को मुक्का लग जाता है, किसी को थप्पड़ लग जाता है। तो बहुत भाव विभोर अगर अच्छे मीठे ढंग से मधुर भाव से करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मानो हम वो बाहर जैसे वो करते हैं वैसे नहीं, मधुर होना चाहिए, मधुर नृत्य जिसे देखने वालों को भी आनंद आए, करने वाले को भी आनंद आए, किसी को चोट भी ना पहुंचे। इस तरह से कीर्तन और कीर्तन चलता रहा, भक्ति रस का समुद्र वहां बह रहा था, सभी लोग इस समुद्र के लहरे से बहे जा रहे थे और आखिर में जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर पहुंच गए और वहां फिर वो 7-9 दिन के लिए विराजमान रहे। और चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों के संग में वहां पास में ही रहने लगे और हर रोज आकर वहां जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे और वहां जो पास में जो कुंड हुआ करते थे वहां अपने पार्षदों के साथ में जाकर स्नान किया करते थे और धुआंधार कीर्तन वहां रोज सुबह शाम हुआ करता था। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और अपने भक्तों ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई और गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। इस सिलसिले में और कितने ही बहुत सारे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं रथ यात्रा के बारे में, लेकिन एक ही बार एक ही क्लास में तो प्रवचन में तो सारी लीलाएं सुनाई नहीं जा सकती हैं। तो इस तरह से आज हम स्मरण कर सकते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में आज क्या हो रहा होगा, गुंडीचा मंदिर में मंदिर साफ हो रहा होगा और कल रथ यात्रा जगन्नाथ जी बाहर निकलेंगे, अपने सर्दी से बीमारी से ठीक होकर बाहर आएंगे और हजारों की संख्या में लोग उनका दर्शन करेंगे। तो ये एक चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए और आज जब हम कीर्तन करेंगे तो जगन्नाथ जी से, बलदेव जी और सुभद्रा मैया से प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी कृपा याचना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भी ऐसे ही कृष्ण भक्ति की भावना अच्छी तरह से जागृत हो जाए और भगवान के नाम का रस हमें मिल जाए, भगवान के नाम लेने की रुचि हमारे हृदय में जागृत हो जाए। ये प्रार्थना हम आज कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ जी की, श्री बलदेव जी की, सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव की गौर प्रेमानंदे। किसी के कोई प्रश्न, टीका, मतभेद? भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में 9 दिन के लिए क्यों जाते हैं? अभी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए
और एक प्रवचन लगेगा। लेकिन अभी सभी के चेहरे से ही देख रहे हैं कि लोग जगन्नाथ जी की सेवा और एक तरह से करना चाह रहे हैं, प्रसाद की सेवा भी करना चाह रहे हैं। लेकिन संक्षेप में इसका जवाब दें तो जगन्नाथ का मंदिर जो नीलाचल है वो द्वारका के बराबर है। द्वारका में कृष्ण भगवान कैसे रहते हैं? कौन है द्वारका में कृष्ण? द्वारकाधीश अर्थात राजा है। सोने का मुकुट, रेशम के कपड़े, गहने, हीरे, मोती, साथ में नौकर चाकर, बैंड बाजा सब कुछ होता है, घोड़े, रथ, है ना, धनुष बाण सब लेकर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। राजा बिल्कुल अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं, राजसभा में जाते हैं, राज करते हैं। तो द्वारका ऐश्वर्य से पूर्ण है, इसलिए वहां के जो श्री कृष्ण है उनको ऐश्वर्यशाली, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन वृंदावन के कृष्ण क्या है? वृंदावन के कृष्ण क्या उनके पास में आप कोई धनुष बाण देखेंगे? उनके सर में क्या आप सोने का मुकुट देखेंगे? नहीं। वहां क्या देखेंगे? वहां उनकी बांसुरी देखेंगे, वहां उनका बाजा देखेंगे, वहां पर देखेंगे उनका मोर पंख, वहां देखेंगे गाय और गाय के बछड़े, वहां देखेंगे कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग में वो गाय चरा रहे हैं, वो गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं, नंद महाराज और यशोदा मैया को आनंद दे रहे हैं। यह है वृंदावन। तो वृंदावन में ऐश्वर्य की भावना नहीं है। वहां वृंदावन के कोई भी निवासी भगवान या कृष्ण को भगवान नहीं मानते, केवल कृष्ण को अपना साथी, अपना प्रेमी, अपना मित्र, अपना पुत्र इत्यादि मानते हैं। लेकिन द्वारका में सभी लोग कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, ऐश्वर्य की भावना। लेकिन वृंदावन के निवासियों का प्रेम इतना गाढ़ होता है कृष्ण के प्रति कि ये भी भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। इतना ज्यादा प्रेम होता है इनका कृष्ण के प्रति। इसीलिए वृंदावन का भाव जो है और द्वारका का भाव बिल्कुल अलग है। तो जो जगन्नाथ मंदिर है नीलाचल, वो द्वारका है। द्वारका का भाव वहां है, वहां 56 भोग चढ़ाया जाता है हर रोज जगन्नाथ जी को। और जो गुंडीचा का मंदिर है वो वृंदावन की तरह है। तो रथ यात्रा में क्या होता है कि गोपियां और खास करके श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान को द्वारका से खींच कर कहां ले जाते हैं? वृंदावन, खास करके कुरुक्षेत्र से। क्यों कुरुक्षेत्र? क्योंकि एक बार सूर्य ग्रहण के समय सारे द्वारका के निवासी कुरुक्षेत्र में गए थे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण धर्मस्थल माना जाता है, तीर्थ स्थान है। वहां जाके सभी लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करना चाहते थे। उस समय वृंदावन के निवासी भी वहां आए और उस समय गोपियों ने और खास करके श्रीमती राधा जी ने भगवान कृष्ण को देखा बहुत सालों के बाद में। लेकिन ये कृष्ण को जिनका दर्शन उन्होंने किया, ये अलग कृष्ण थे कुछ, क्योंकि ये तो बड़े धूमधाम से ऐश्वर्यशाली कृष्ण थे ये। लेकिन उनको चाहिए था बांसुरी बजाने वाला कृष्ण। तो फिर उन्होंने कहा, कृष्ण के रथ को रोका, कहा कि आप वृंदावन चलिए, ये द्वारका वाले कृष्ण हमको अच्छे नहीं लगते, आप हमारे साथ चलिए वृंदावन। तो इसलिए ये जो लीला हुई जिसमें राधा रानी और गोपियों ने कृष्ण भगवान का रथ कुरुक्षेत्र से वृंदावन खींच के ले जाने का की योजना की, उसको अमर किया, वो लीला को अमर किया गया है इस जगन्नाथ रथ यात्रा के महोत्सव में। इसलिए जो भक्त होते हैं, खास करके चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, श्रीमती राधा का भाव लेकर आए हैं और जगन्नाथ जी कृष्ण है, इसलिए राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को नीलाचल से लेकर सुंदराचल जगन्नाथ जी मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर में ले जा रहे हैं। यह तात्पर्य है रथ यात्रा का, लेकिन ये केवल संक्षेप में बताया है। ठीक है, और कोई प्रश्न? कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे रामा रामा
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।